نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دم ذریعہ علاج. آج ہم اس میں نیا ٹاپک شروع کریں گے. ابھی تک ہم نے جادو اور جادو سے متعلق چیزوں کو دیکھا, اب ہم دوسری بیماری نظر لگنا, یعنی نظر لگنا کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج اور اس کے اقسام دیکھیں گے. کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 19 یعنی 19. نظر لگنے کے علاج کی کئی اقسام ہیں. پہلی قسم, نظر لگنے سے پہلے اس کی مختلف صورتیں ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جادو کے باب میں بھی ہم نے پہلے وہ چیزیں دیکھی تھی کہ جادو ہو ہی نہ, اور یہاں پھر وہی بات دہراؤں گی جو شاید پیچھے کی ہو کہ اسلام کا مزاج جو ہے نا یہ پریونٹیشن کا ہے. لکھیں ذرا انگلش کا ایک لفظ ہے پریونٹیشن, کسی چیز سے بچاؤ کرنا. جبکہ آج کے دور میں ویسٹرن سٹائل کہہ لیجئے, یعنی آج کی پوری دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کا انداز ہیلنگ کا ہے. لکھیں دونوں لفظ, انگلش میں اس لیے بول رہی ہوں کہ پھر زیادہ سمجھ آتی ہے, اردو میں شاید سمجھ نہ آئے. پریونٹیشن کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ بیمار نہیں ہوئے تو آپ کچھ پرہیز کر لیں اور آپ اس بیماری سے بچ جائیں یا اس خرابی سے بچ جائیں. یہ چیز بیماریوں کے لیے بھی ہے اور یہ اخلاقی, روحانی, قلبی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے. اس کی مثال صورت بنی اسرائیل کی آیت, ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی وہ ساری پری ریکویزٹ یا وہ ساری پیش بندیاں جو زنا کو روکیں, زنا کی طرف لے جائیں, اس کو روک لو. ٹھیک ہے, ویسٹ کا یا موجودہ دنیا کا نظام کیا ہے آج کے حساب سے ہیلنگ کا؟ ہیلنگ کیا ہوتا ہے کہ بیمار ہو گئے اب جلدی سے علاج کرو. مثلا آپ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اولڈ ہوم نہیں دکھتا, کرائسس سینٹر نہیں دکھتا, لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جب ہم آتے ہیں تو بہت سارے دکھتے ہیں. تو ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کتنے اچھے ہیں, دیکھیں انہوں نے بوڑھوں کے لیے بھی گھر بنائے ہیں, بچوں کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے, کرائسس سینٹرز بھی ہیں. لیکن وہ اسباب نہیں دور کرتے کہ گھر ٹوٹتے کیوں ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس کو اسی طرح سمجھے کہ ایک گڈھے کے ایک کہیں گڑا ہے, پیچھے مثال دی تھی, تو ایک گڑا ہے اور اس جگہ کوئی کمپنی ہے تو وہ جا کے ہاسپٹل بنانا شروع کر دے. کیا سوچ کر کہ یہاں لوگ گڑے میں گریں گے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹیں گی اور ہم ہڈیوں کو جوڑنے کا ہاسپٹل کھول دیتے ہیں. تو ہم کہیں گے عقل مندی ہے؟ نہیں. دوسرا کہے گا آپ جتنے پیسوں کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں تھوڑے پیسے لگا کر آپ اس گھڑے کو بند کر دیں. تو یہاں جو بات اب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ نظر لگنے سے پہلے, یعنی جیسے جادو ہونے سے پہلے اس کا علاج کر لیا جائے تو مشکلات نہیں پڑیں گی. تو زندگی کا خوبصورت اصول ہے, ہمارے بچپن سے یہ باتیں ہم نے سنی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. پہلے پرہیز کیا جائے تو پھر بہت ساری مشکلات تو آتی بھی نہیں ہیں. تو پہلی چیز کہ نظر نہ لگے, اس کی کیا صورتیں ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں, پھر اسی طرح انشاءاللہ آگے اس میں ہم دوسری اور تیسری چیزوں کو بھی دیکھتے جائیں گے. پہلا کام یعنی پہلا علاج کہ نظر لگے ہی نہ, حفاظت. جس کو نظر لگنے کا خوف ہو وہ صفحہ 8 پر درج مسنون اذکار, دعائیں اور معوذات کا اہتمام کرے. یعنی وہ ساری دعائیں جو ہم نے جادو نہ ہونے کے لیے پڑھی تھیں وہی چیزیں نظر بد سے بچنے کی ہیں, کیونکہ ان میں بچاؤ ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ساری چیزوں کو دہرا لیتے ہیں, مثلا شریعت کے واجب احکامات کو ماننا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی پابندی, منع چیزوں سے پرہیز, شراب نہ پیئے انسان, سود میں نہ پڑے, برائیوں سے توبہ کرنا, پھر قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کرنا, ہر روز کچھ حصہ پڑھا جائے, پھر اسی طرح سے مسنون اذکار جس میں صبح و شام کی دعائیں وہ پڑھنا, معوذات پڑھنا, پھر اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر کی دعا ہم نے پڑھی تھی, پھر اسی طرح جو چیزیں آگے ہیں ہمارے سامنے آیت الکرسی, سورت اخلاص, سورت فلق, سورت ناس. یہ میں ریفرنس کے لیے بول رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی نے پیچھے کا حصہ نہ سنا ہو تو پھر اس سے بھی تو فائدہ اٹھا لے. یعنی یہ ساری چیزیں پھر وہ پڑھے گا, صبح و شام کے اذکار کا کرنا, سونے جاگنے کی دعاؤں کا یاد کرنا, پڑھنا بھی, گھر سے نکلتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے, سواری پہ بیٹھتے سواری سے اترتے, ایون ٹوائلٹ میں جانے ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعائیں, یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں جیسے اجوا کھجور کا اہتمام. تو مقصد کیا ہے کہ حفاظت کریں. دیکھیں آپ نے اکثر ایئرپورٹس پہ اور پبلک پلیسز پہ یہ چیز لکھی ہوگی, اپنے سامان کی خود حفاظت کریں یا چوری کی صورت میں ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا. تو میں اور آپ اپنی صحت اور اپنی روح کا علاج خود کریں, اس کی کیئر کیجئے. نظر بد جو ہے نا یہ برحق ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, अलैनुन हक्कुन, नजरे बद का लग जाना बरहक है कि ये लग जाती है। आज डॉक्टर्स ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया और मुशाहिदा भी इस बात का गवाह है कि हमारी आंखों से रेज निकलती हैं। आप देखिए कि कोई आप कहीं आप इसका फील करना चाहें तो कैसे करें, आप कहीं बैठे हैं तो कोई आपको घूरना शुरू हो जाए, थोड़ा सा और घूरेगा, थोड़ा सा और घूरे, जिसको आप पंजाबी में कहते हैं ना, कोई आपको ताड़ना शुरू कर दे तो आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, आप इचिंग फील करेंगे, आपको बेचैनी होगी। और बाज़ दफ़ा किसी के देखने का अंदाज़ इतना गहरा होता है, इतनी यानी वो गहराई से इन चीज़ों को देखता है कि जिसके बाद आप देखते हैं, आप उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो लिहाजा मोहब्बत की नज़र हो, गुस्से की नज़र हो, बाज़ दफ़ा जज्बात भरी नज़र, बाज़ दफ़ा लस्ट वाली नज़र, ये लग जाती है। नज़र लगने का अमल बरहक है और नबी सल्लम अपने नवासों को भी दुआएं पढ़ा करते थे। आपने इस तरह की दुआएं सिखाई कि जिससे पता चलता है कि नज़रें बद से इंसान बच सके। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने की कोशिश करते थे मुशरिकीन। सूरत कलम की आखिरी आयात में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कर दिया कि वही यकादुल्लज़ीन कफरू लो युज़लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा, कि ये अहले किताब जब आपको देखते हैं जिक्र में, यानी आप जब दीन कर सिखाते हैं सीखते हैं, तो ये आपको घूरते रहते हैं ताकि आप अपनी जगह से हिल जाएं। तो हदीस में आता है कि नज़रे बद ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है, यानी सेहतमंद ऊँट खड़ा खड़ा ऐसा बीमार होता है कि आखिर उसको ज़िबा करके पकाना पड़ जाता है और फिर उसके गोश्त को लोग खाते हैं। इसी तरह सेहतमंद इंसान को नज़रे बद बिस्तर पर लगा देती है, इंसान मौत के मुंह में जाता हुआ महसूस होता है। ऐसे वक्तों में इस तरह से एक इंसान को केयरफुल रहना चाहिए। तो अगर मैं और आप ये सारी हिफाजती तदाबीर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इससे बच जाएंगे। दूसरी चीज़, जिसे खुद अपने माल, औलाद या अजीज़ो अकारिब को नज़र लगने का डर हो तो वह इनके लिए बरकत की दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई में कोई अच्छी बात देखे, यानी वो चीज़ उसको अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, वो उसको लाइक करे, तो इसके लिए दर्जा ज़ैल अल्फाज में बरकत की दुआ करे। आप मेरे साथ दोहराइएगा, माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक अलैह। इसका लफ्जी तर्जमा लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो लफ्ज़ है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या इस तरह के अल्फाज चुभते हैं, वो इसको समझते नहीं है। हमारे ख्याल में नागवार चीज़ को देखकर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, हालांकि आप देखेंगे इसमें तर्जमा क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कीजिएगा, हो सकता है आपको ये आ जाए पेपर में। लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इनको ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए। लफ्ज़ी तर्जमा देखिए, माँ जो शाह चाहा, माजी का सीगा है, चाहा विल्ड, अल्लाहु अल्लाह ने, ला नहीं, कुव्वता कोई कुव्वत, इल्ला सिवाय बिल्लाही अल्लाह के, यानी अल्लाह की कुव्वत के सिवा और किसी की कुव्वत नहीं है। किस चीज़ में? किसी भी चीज़ में। जब हम कहते हैं ना ला हौला वला कुव्वत, तो ला मैंने नहीं, हाल घेरने वाला, हाला या हीलू हम पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं आजकल माहौल बड़ा ख़राब है, तो हॉल ये है, आप मेरे उंगली को देखें ना, हॉल, माहौल जो मेरे आपके इर्द गिर्द है, सराउंडिंग इंग्लिश में कहेंगे, तो ला हौला नहीं कोई घेरने वाला, इल्ला बिल्ला मगर अल्लाह, यानी अल्लाह की कुदरत का इजहार है इसमें, अल्लाह ताला की पावर और उसकी मैजिसिटी का अंदाज़ है कि ला कुव्वता नहीं कोई कुव्वत, इल्ला मगर बिल्लाही अल्लाह के साथ, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक बरकत दे, अलैही इसमें, यानी माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, किसी की कुव्वत नहीं अल्लाह के सिवा, ए अल्लाह इसमें बरकत दे। और अगर आपको इतनी लंबी नाम भी याद रहे ना, तो बारक अल्लाह कह दिया करें, बारक अल्लाह, किसी को अच्छे कपड़े देखे बारक अल्लाह, अच्छा खाना उसके हाथ का देखा बारक अल्लाह, घर सजा हुआ देखा बारक अल्लाह, भाग भाग के काम करते देखा बारक अल्लाह, यानी आपकी मेरी जुबान पे सांस के साथ डोरी की तरह बारहकिल्ला जाना चाहिए अगर हम अपने इर्द गिर्द वालों से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों को दें, मेरा बच्चा बारहकिल्ला, आपको बच्चे की कोई बात प्यारी लगी, मेरा बच्चा बारहकिल्ला, बरकत अल्लाह तुम, अपने बच्चों को पानी की तरह सिखा दें, यकीन करें ये खैर महसूस तरीके की दुआएं आपके बच्चों को दीन पे ले आएंगी। और जब हमारे घरों में ये रिचुअल्स आम होते हैं ना तो इसकी तासीर दिखती है, अस्सलामु अलैकुम, बरकिल्ला, माशाल्लाह, ये कल्चर आम करें। हम हाओ वाओ और पता नहीं शोर मचाते रहते हैं, बच्चों को तो मैंने बहुत कम देखा है कि वो इस तरह के खूबसूरत जुमले बोले। तो अच्छा किरदार जो बच्चों का होता है ना उसमें बड़ी गहराई होती है। कल एक माँ मुझे शेयर कर रही थी, बहुत अच्छी मेरी साथी, तो आजकल पाकिस्तान में गई हुई है, माशाल्लाह उनके बड़े जवान बच्चे हैं, तो बहुत एटिकेटेड और वेल मैनर्ड बच्चे हैं। तो बताने लगी कि करेक्टर क्या होता है, तो वो बच्चे वहाँ गए तो गार्ड मैन है तो उसके साथ उन्होंने बच्चों को बाहर कहीं भेजा घूमने के लिए, तो वो गए हुए थे बाहर, तो कहने लगी कि मेरे बेटे ने देख, पानी की बोतलें थी दोनों सबके पास ना, तो उसने क्या देखा कि जो गार्ड मैन है उसने पानी की बोतल पी, अभी उसमें थोड़ा था ना तो उसको एज इट इज़ वहीं फेंक दिया। तो इसको बुलाने लगा, आओ जल्दी, इसने कहा ठहरो लेट मी फिनिश, मैं इसको ख़त्म करूँ। उसने अपनी पानी की बोतल ख़त्म की, फिर उसके बाद उसने उसको ढक्कन लगाया, तो एक बैग था उसके पास, उसमें उसने अपनी भी बोतल डाली, और वो जो गार्ड ने नीचे ज़मीन पे फेंक दी थी या जहाँ भी उसने वो भी पकड़ के डाल के, तो वहाँ कहीं होगा कोई कूड़े कूड़ा खाना को ट्रैश बॉक्स, उसमें डाल दी। कहने लगी कि वो मेरा बेटा कहता है कि उस वक्त मुझे नहीं कुछ कहा उसने गार्ड ने ना कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर उसके बाद जब हम कहीं गए गर्मी में दोबारा फिर कहीं पानी मिला तो उस गार्ड ने अपनी पानी की बोतल ख़त्म की, उसको बंद किया और उसको फिर बिन में फेंकने लगा, और अपने साथ उसके जो और दूसरा आदमी था उसको कहने लगा ये बात थोड़ी देर पहले मैंने इस बच्चे से सीखी है। तो वो बच्चों को पूछ रहे थे कि तुम्हारे ये एटिकेट्स या तुम्हारी अपब्रिंगिंग किसने की है। अब आप देखिए ये जिसको कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन करेक्टर, किरदार से ऊपर बोलता है। तो आप, मैं अगर अपने बच्चों को ये छोटी छोटी अभी से सिखा दें कितना प्यारा लगता है बच्चों के मुंह से। और आप देखते हैं कि जो बच्चे इस्लामिक स्कूलों में जाते हैं उनको आदत हो जाती है, खासतौर पर अरब मुल्कों में जो बच्चे होते हैं उनको माशाल्लाह ये छोटी छोटी दुआएं देना और छोटी छोटी हदीसें वैसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आज से अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी ये रखें और नियत ये करें कि ये दुआ है। आप ये कहते हैं तो आप अगले को दुआ दे रहे होते हैं, तो हमें इतने स्ट्रेंजी और इतने कंजूस तो नहीं होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बखल करें। तो बरकत की दुआ कीजिए। ठीक है, अगली चीज़ बड़ी अहम है जो मैं बड़ी बेचैन हूँ आपको बताने के लिए, नजरे बद से बचाने का नुस्खा, जिन महासिन, महासिन क्या है, हुसन की जगह, खूबसूरत चीज़ें, ब्यूटीफुल थिंग्स, या आप कह सकते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव थिंग्स हैं, जिन महासिन के इजहार से नज़र लगने का खदशा हो इन्हें पोशीदा रखे, यानी डोंट एक्सपोज योर ब्यूटी। हम कहते हैं खूबसूरती दिखाने की चीज़ दिखाओ इसको, ये है आज के दौर में बहुत ज़्यादा काबिले गौर नुक्ता। चूँकि अल्लाह ने रिसोर्सेज दे दिए, दौलत भी है, तो माल का एक्सपोजर बहुत हो गया है, खूबसूरती का एक्सपोजर, कपड़ों का एक्सपोजर। आप नोट करके देखें, एक आम सी ख़वातीन की जो शॉपिंग लिस्ट होती है ना उसमें चेक करें, खूबसूरती वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं कारामद चीज़ों की नस्बत। बस अगर गर्मियों में आपको लॉन के कपड़े तो चाहिए होते हैं ना, जैसे आम सीधे सादे कपड़े हम सब पहनते हैं ना, ये सादे कपड़े होते हैं, ये धुले धुले चलते हैं, चाहे आप 20 दफ़ा पहने, 50, 100 दफ़ा पहन ले, ये फिर नए लगते हैं, कभी ख़राब नहीं होते, ये इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इसके बरक्स एक जोड़ा जो आप किसी शादी के मौके पे पहनते हैं, कौन सा महंगा है, शादी का महंगा है, लेकिन अकल से पूछा जाए तो पैसों की कीमत किसकी पूरी हुई, लॉन के जोड़े की हुई। खूबसूरती दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए, फिर उस पर जो हम खूबसूरती का इजहार करते हैं, आप इमेजिन कीजिए एक लड़की है उसके भाई की शादी है, अमूमन भाइयों की शादी हमारे लिए बहुत सेंटिमेंटल मौका होता है, पूरी कोशिश से तैयारी से उसने तैयारी कर ली, 1 लाख रुपए पे पड़ी वो अपनी माँ को, जोड़ा जूती परस जो भी कर लीजिए, ठीक है ना, उस दिन उसने फजर की नमाज पढ़ी। अब ये जो पहली चीज थी ना मैं उसको सामने ला रही हूँ, भाई की शादी है, अब नमाज पढ़े, रात इतनी देर से फारिग हुए थे मेहंदी से फंक्शन से, अब फजर उठ हुई नहीं, फजर नहीं पढ़ी, सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ी, मुआवजात पढ़ना भूल गए, और कुछ फ़राइज़ छुटे हुए, और हो सकता है कुछ मुनकर भी ज़िंदगी में आ गया खुशी के मौके पे, इतने ज़्यादा जरासीम जमा हो गए उस लड़की को नज़र लगने के, बात समझ रहे मेरी बात, यानी ये सारी पेशकदमियाँ जो हो चुकी हैं, नमाज नहीं पढ़ी, फिर उससे मुनकर हुआ, कल रात हो सकता है एक्सपोजर किया, जिस्म दिखाया या अपने आप को खूबसूरत दिखाया, सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ी और कुछ ना कुछ हुआ। अब ये सारी वो जैसे वो कहना चाहिए ना, सीट बेल्ट भी नहीं बांधी, खिड़की भी नहीं खोल दी, डोर भी गाड़ी का दरवाजा भी खोल दिया, तो गाड़ी से गिरने के खतरे ज्यादा हैं। ऊपर से फिर आप वो जोड़ा पहनते हैं जो माशाल्लाह अपनी जगह बड़ा खूबसूरत सूट है, कोई मना नहीं है पहनना, बुरी बात नहीं है, आप 2 लाख का जोड़ा पहन ले, आपको कोई नहीं रोक सकता, ना आपको कोई कुछ कह सकता है, इसराफ किया आपने। लेकिन जब ये सारी पेशबंदियां नहीं, फिर उसके ऊपर आपने कोई 10-20 हज़ार रुपये देकर मेकअप कराया, आपको पता है दूल्हा की बहनों का मेकअप 10 हज़ार से ऊपर का है पाकिस्तान में, कैन यू बिलीव? जी, मैं आपको गवाही दे सकती हूँ इस बात की। आप पार्टी मेकअप करा रहे हैं, आप एंगेजमेंट मेकअप करा रहे हैं, और दुल्हन से कुछ कम ही करम फर्क होता है उसमें। फिर आपने मेकअप किया, अब जब बाल इतना छज्जा सर पे बना लिया तो दुपट्टा किसने लेना है? अब आप जाग दूल्हा की बहन है तो आप खड़े भी एंट्रेंस पे, क्योंकि बारात के साथ आप आए हैं, क्योंकि जिसने हर मुमकिन कोशिश कर दी है कि मुझे नजर लगे, तो फिर नहीं लगेगी, लगती है। किसी बच्ची को देखा तो इतने एक्सपोजर में देखा कि दुल्हन तो फिर भी दुपट्टा ओढ़ के बैठती है ना, तो उसका तो मुंह छुपता है, पहले तो छुपता था कि चलो कोई जाके देखता है, तो जो ये बहनें भाभियां सज के फिर रही होती हैं दरवाजों पे और मर्द लड़के देखते हैं, सबसे पहले उनको नजरें लगती हैं, तो ये कह के अपने हुस्न को छुपाए। हमारे बड़े जो थे ना, इस चीज को पसंद नहीं करते थे। मुझे अपने घर की बहुत पर्सनल क्लोज मिसाल याद आ गई। मेरी बहन का बेटा इंतहाई खूबसूरत था बचपन में भी, अभी भी अच्छा है, लेकिन जो बचपन में घुबला मुकला गोरा चिट्टा था, पहला बच्चा था, कहले आंखों का तारा था, तो वो हमारे पास आई हुई थी रहने के लिए ना, मेरा ले कुछ महीने का बच्चा था, आज भी मेरी आंखों के सामने है। हम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, हुए तो वो निकली है तो रॉयल ब्लू और ऑरेंज कलर का, जो बच्चों के निक्कर शर्ट नहीं होते छोटे छोटे बच्चों के, मेरी बहन ने अपने बच्चे को पहनाया और वो ऐसे लग रहा था कि बस नजर ना लगे। तो मेरे अबू ने डांटा, जाओ इसके कपड़े बदल के और फिर लेके जाऊंगा। जा भी हम कहीं बाहर क्लिफ्टन घूमने शूमने जा रहे थे, कहा अब सजा के ले आइए, बाद में कहेगी सारी रात रोता रहा। ये मेरे अपने अबू के लफ्ज़ थे। और इट्स ट्रू, जितनी खूबसूरती छुपेगी ढकेगी वो अच्छी होगी, और दूसरा ये नजरें लगती हैं। एक और मिसाल हमारी अपनी बहुत प्यारी साथी है, चांद जैसा बेटा और कहना चाहिए सितारे जैसी बहू, सूरज चांद की जोड़ी जिसको लोग कहते हैं, अच्छा गुबरू जवान, अच्छा भला शादी कहती करके आया। शादी के बाद सिर्फ 3 माह गुजरे हैं और वो ससुराल पहली दफा गए, बाहर की शादी थी, जाना आना लगा, कहती है ऐसा वो बेड पे पड़ा है कि वो उठ ही नहीं पा रहा, उसके अजीब सी गंठिया का दर्द के डॉक्टर उसको नहीं समझ आई, और माँ टप टप रोती है कि मेरा शेर जैसा बेटा बिस्तर पे लेटा, 3 माह की शादी है, और शादी से पहले कहती सर दर्द भी नहीं हुआ। और वो तस्वीरें और एल्बम जब देखे तो खुद कहने लगी, मुझे मेरा दिल कहता है मेरे बच्चे को नजर लगी हुई है, लगती है। आप इतना जो साजे सजा के फिर आप फेसबुक पे लगाएं, जिस जिसने नजर नहीं लगानी वो भी लगाए, आप अपने प्रोफाइल पे भी अपनी शादी की तस्वीर लगाएं ताकि मुझे नजर लगाओ, मुझे देखो, ये जो आप कहते हैं मुझे देखो, तो ये क्या है, मुझ पर नजर कीजिए। वो हमारे पाकिस्तान का एक मशहूर जुमला है, ऐसे जोक सा याद आ गया, तो वो डॉक्टर की दुकान पे जाके औरतें बैठ जाती हैं ना, अब लाइन में लगी हुई थी एक औरत, तो डॉक्टर साहब एक को देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो वो बेचारी काफी देर से बैठी हुई थी, तो कहती है डॉक्टर साहब मुझे देख ले, डॉक्टर साहब मुझे देख ले, तो डॉक्टर साहब उसको देख के कहता जी देख लिया आपको। यानी अब ये बेवकूफियों के जुमले होते हैं, लेकिन ये हमारे कल्चर के झोल है। तो वो पीछे पड़ी हुई थी, डॉक्टर साहब मुझे आप देख ले, तो देख लिया बेचारे ने, अब जाइए। तो आप याद रखिए, आखिर में देखिएगा, आखिरी दौर में लोगों ने इस्लाम की इन खूबियों की वजह से पर्दा भी शुरू कर देना। आप हीरे की कनी लगे, आप क्यों हर एक को दिखाते हैं? और क्या हर नजर ऐसी इस काबिल होती है कि आप उसको दिखाएं, हर बंदे इस काबिल आप उसको दिखाएं? तो हमेशा खूबसूरती को छुपाएं। खाना सा कहीं आप इस तरह से उठ के मेरा हाल नेबर में खाना भेजें, तो अगर मेरे घर कोई खाना आया और ऊपर से खुला हो तो मैं तो नहीं कभी लूंगी उनसे। क्या हम खाना ढक के नहीं भेजते किसी को दें, तो कोई गिफ्ट दें तो उसको पैक करके नहीं देते? तो हम अपनी खूबसूरतियों को क्यों एक्सपोज करते हैं? ये मैं झूठ नहीं कह रही आपको, ये जादू का जो हमारा सेमिनार था उसमें यकीनन इस पे बात हुई होगी कि बच्चियां खास तौर पे बाल खोलकर लंबे नाखून, ये 2-3 चीजें जिन्नों की पसंदीदा चीजें हैं। आप सुनिएगा, आजकल वो जादू का कहीं और भी चल रहा है, मैं सुन रही देख रही हूँ, सुनती तो नहीं हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने जादू का सेमिनार ग्रुप में चलाया हुआ है। एक बच्ची का मैंने वाक्य सुनाया था जो रिसेंट, आप कहेंगे ये सारे किस्से अपनी सुना रही है, लेकिन आंखों देखी बातें हैं, कि एक बच्ची हमारे अपने मतलब अंकल थे उनकी, यानी मेरे अब्बू के दोस्त की बेटी थी, उनकी शादी की तैयारी थी, शादी हो रही है, आम बच्ची जैसे सब होती हैं उस तरह शादी हुई, एक शादी से 1 हफ्ता पहले एकदम सुबह उठी उसकी आवाज बंद। अभी बच्चियां तो कम से कम डरे, अल्लाह करे आज डरे, आवाज नहीं है, बोल नहीं रही, गूंगी हो गई, सुनती थी बोलती नहीं थी, परेशान, डॉक्टर्स को दिखाओ, और ज़ाहिर की शादी सर पे थी, चेक कराया, टॉन्सल शॉन्सल, डॉक्टर कहते कुछ बीमारी नहीं है। खैर, कर करा के शादी को थोड़ा पोस्टपोन किया। अब वो वही जो होता है अमूमन, के ये इस पे तो कोई असर है, उसको किसी जगह ले जाओ, ये करो वो करो, और ये रियलिटी है। एक दीनदार थे जो कुरान सुन्नत के मुताबिक इलाज करते थे, उनको बुलाया गया। खैर, वो गए, उन्होंने देखा, जो भी किया, वो उन्होंने जो बात बताई जो मैं आपको बताने लगी हूँ, कि वो कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर एक जिन आशिक था। ये अभी छोटी थी, 10-12 साल की थी, किसी वक्त ये खुली जगह पे गई है तो जिन इसके ऊपर आशिक हुआ है। तो इसको कुछ नहीं कहता था, आज तक उसने इसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इसे मोहब्बत करता है कह लें, या दीवाना है इसका, तो वो उसको तकलीफ तो नहीं देगा ना। अब जब उसको पता चला कि इसकी शादी हो रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो उसने इसका गला पकड़ा हुआ। कैन यू बिलीव, मैंने खुद उस बच्ची के साथ बैठ के बात की, जब वो उसकी आवाज़ बनती है, हम ऐसे ही उनको मिलने गए, तो मेरी आवाज़ सुन रही है लेकिन बोल नहीं पा रही, तो लिख के बात कर रही थी। तो ये जिन आशिक हो जाते हैं, ये जिन आशिक हो गया तो बनेगा क्या? लड़का आशिक हो गया तो फिर तो चलो शादी हो जाएगी, जिन आशिक हो गया तो क्या होगा? जी, आप कुछ कहना चाह रहे? जी, मैं आपको भी स्टोरी, मुझे पता है आपको फिक्र लग गई है। उसके बाद क्या हुआ कि जाहिर है कि वो उसका इलाज शुरू किया, फिर शायद 2-3 महीने से गुजर के ऐसे ही एक दिन है ख्याल आया कि उनका हाल पूछें, तो उनके घर हमने फ़ोन किया, मैंने शायद बात हुई की, तो उधर से एक लड़की बोली, तो मैंने कहा अच्छा वो मैं फुलाँ हूँ फुलाँ हूँ, तो वो आपके घर में बच्ची थी, उसका क्या बना? तो कहेंगी मैं ही वो बच्ची हूँ। उसके बाद फिर वापस आ गई थी, उन्होंने उसका रुकिया करा। अच्छा, ये सवाल वहां से उठ के यहाँ आया ना शादी का, अब इधर इसके बाद ये रबिया जी ने कहना फिर बच्चा हुआ था, फिर मुमताज जी ने कहना था कोई इलाज कराया था, फिर पीछे से साजिदा जी ने कहना था ससुराल में खुश थी। ये कहते इल्मी शौक, क्या माशाल्लाह इल्मी शौक है आप सब में, सवालात इतने हैं आपके जहनों में। जी हम जब इतने खूबसूरत बन के देखते हैं, तो इंसानों के दिल पे वो क्या कहते हैं बिजलियां गिरती हैं, तो जिन्हों पे नहीं पड़ी गिरेंगी, वो बिजलियां गिराते हैं हम उनपे। हैं परियां, तो मैंने भी सुना है, माइंड ढूंढती हैं मैं तेरे लिए परी लाऊं। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि खूबसूरती को जाहिर ना करें, छुपा के रखें। और खास तौर पे फिर देखें, अब आप कहेंगे अच्छा फिर भी खूबसूरत है, फिर भी औरतों में, तो अगर आपने मैंने ये पहली सारी चीजें की होंगी ना, नमाज रोजा जो शुरू की बात है, तो इंशाल्लाह फिर नुकसान नहीं होगा। अब आप कहते हैं फिर सारी खूबसूरत चीजें छुप जाएं, फिर औरतों में भी ना जाएं, अच्छा फिर बच्चे खूबसूरत हैं तो क्या हम उनको बदसूरत कर दें? नहीं, आप पेशबंदी रखें। जी
सादा जी, मैं एक बात बताऊं, मेरा बेटा है, तो मुझे ये जिन्नों वगैरह भी, मुझे इस तरह की बातों पे, तवीज़ों वगैरह पे यकीन नहीं होता ना, तो अब तो जाहिर है मैं कुरान की रोशनी से पढ़ रही हूँ सारा कुछ, तो वो ना पाकिस्तान में गई तो मेरा बड़ा बेटा कुछ अर्से से ठीक नहीं है, तो मेरी बहन कहती है कि आप ना आपके कालों के पास लेके चलते हैं, तो वाकई वो हैं मदरसा हैं अहले हदीस हैं, तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे आंखें बंद करने को कहा और कलमा शरीफ पढ़ना शुरू किया, और मुझे कहते हैं कि अपने घर पे नजर डालो ना सारे पे, और वाकई में मैंने वहां पे कुछ महसूस किया उस वक्त, और जब मैं घर वापस आई मैंने बच्चों को नहीं बताया कुछ, सारा कुछ नहीं किया, तो एक दिन मेरा वो बेटा बैठा हुआ था मेरे पास, तो कहता है मम्मा आपको पता है कि मैं इतना अरसा एक चीज महसूस करता था कि मेरे कमरे में कोई औरत बैठी है काला बुर्का पहन के और मुझे घूरती है, लेकिन अब आप जबकि पाकिस्तान से वापस आई हैं तो वो वहां पे नहीं है,
ठीक, ये मखलूक है, आपको क्या पता यहाँ कितने हैं, अभी हर जगह होते हैं।
मुझे वो
जी
आलम की बात पर यकीन नहीं आया था, मैं सच्ची बात कहती हूँ, लेकिन जब मेरे बेटे ने ये बात मुझे कही, मैंने उसको बताया नहीं है, लेकिन मुझे फिर यकीन आया कि ये चीजें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं तिल कुर्सी वगैरह पढ़ के उसके बाद उसने नहीं महसूस की ये चीजें।
बिल्कुल सच, चाहिए अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। ओके, और देखिए ये तो दुनियावी नुकसान है ना अल्लाह की बात ना मानने का, तो आखिरत का अजाब या आखिरत की पकड़ कितनी सख्त होगी, और जितना कुछ होगा ये सारा कुछ, यानी अजीबो गरीब कहानी है। 2 दिन पहले मुझे एक वीडियो दिखी, और उसमें मतलब वो अपने तरीके से जिन निकाल रहे थे, क्रिश्चियंस की कोई थी, और वो, यानी बात लंबी हो जाती है, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि हर मज़हब में ये जिन्नात और असेब, इसका कुछ ना कुछ जिक्र है, और गुनाह छुड़ाने का तरीका, जिसको आप, और आपने कभी लफ्ज़ पार्डन सुना होगा ना, कि नॉन मुस्लिम जो होते हैं ये पार्डन बेचते हैं, तो वो दो लड़कियां थी, वो होमोसेक्सुअल थी, तो वो एक पादरी के पास आई हुई थी, तो फिर वो उनसे पूछता है तुम दोनों कौन हो क्या है, तो उसने कहा तुम दोनों शादी की, उन्होंने कहा शादी, उसने कहा तुम वाइफ, उसने कहा मैं वाइफ हूँ, तो दूसरे से कहा अच्छा तुम हस्बैंड हो, कहने के नहीं मैं भी वाइफ हूँ, दोनों वाइफ है दोनों, इस तरह की बातें कर रही थी। फिर उसने एक से कहा कि तुम्हारा बच्चा भी है, उसने कहा बच्चा मेरा पहले से था, ये एक लंबी कहानी थी। फिर वो उनको समझा रहा था कि देखो ये बुरी बात है, ये गॉड को पसंद नहीं, ये नहीं, तो अब मैं तुम्हारे अंदर एक वो जो स्पिरिट चली गई ना उसको निकालता हूँ। तो वो इस किस्म की हरकतें कर रहा था, उसको बिठा के लटा के और शोर मचा रहा है, निकलो अंदर से, इसके अंदर से निकलो। तो ऐसी ये एक लंबी कहानी थी, लेकिन जिसका ये स्लॉट इधर इधर है कि हर मजहब में ये चीज़ है, और जितना कुफर और शिर्क ज्यादा होगा उतनी ये चीज़ ज्यादा होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को कबायर का मुर्तकिब करे, लेकिन कबायर वाले के अंदर तो ये चीज़ें और ज्यादा होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको इन चीज़ों से बचा के रखे। खुलासा क्या है सारी बात का, कि नजरे बद बरहक है, नज़र लग जाती है, और नजरे बद का असर इंसान को मौत तक भी पहुँचा देता है। इसका इलाज कैसे होगा? नज़र लगने से पहले वो सारे काम किए जाएं जो नज़र लगने के रास्ते में रुकावट हों, सुबह शाम की दुआएं और बाकी चीज़ें। फिर उसके बाद है कि जिस खूबसूरत चीज़ को देखे अपनी या अपने घर वालों की, तो बरकत की दुआ दे, अल्लाह मबारक लहम या अल्लाह मबारक अलई। और तीसरी चीज़ यह है कि जिन चीज़ों के ऊपर नज़र लगने का डर है उनको छुपाए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे हम इसका इलाज देखेंगे, और एक बड़ा इसका अनयूजल इलाज है वो अगली नशिस्त आप पढ़ेंगे, और आपको मेरे हाल बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पहले से नहीं पता थी लेकिन वो सही है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सबको पूरी चीज़ों के शर से बचाए और हर तरह के शर से महफूज रखे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।